तर्क दिया, अब इसको आप कैसे काटोगे? अर्जुन का यही कहना है इसको आप कैसे काटोगे? ठीक है, जितनी बातें हैं हमारी सब बेकार है, मान लो धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ हमारा जो मोह है, ठीक है, आपने बता दिया कि शोक नहीं करना चाहिए इनके लिए, है? लेकिन सबसे जो प्रबल तर्क था अपना अर्जुन ने वो दिया, आखिरी अस्त्र अर्जुन ने अपना चलाया, है ना? अब वो क्या है कि भीष्म द्रोण के साथ कैसे युद्ध करूं? द्रोण और भीष्म ये दोनों ही हमारे पूजा के योग्य हैं, हमारे गुरु हैं, कैसे? तो अब तात्पर्य में हम सुनेंगे द्रौपदी जी क्या लिख रहे हैं। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव तात्पर्य पूजनीय है, इसमें कुछ गलत छपा है, सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रतियोत्स्यामी का है, प्रति माने उलटकर युद्ध करूं। अगर वो युद्ध भी करें, अर्जुन का ये कहना है कि अगर भीष्म और द्रोण अगर मुझे मारें भी तो भी उलटकर मैं कैसे मारूं? युद्ध करने की बात तो दूर रही, अगर वो युद्ध करें और हमें पीटें भी, मारें पीटें भी, तो भी उलट करके हम कैसे मारें? ये कैसे संभव है? अगर पिता अपने पुत्र को पीट दे, मार पीट भी कर दे, तो भी पुत्र कैसे उल्टा पीटे अपने पिता को? अगर गलत तरीके से भी पिता अगर पुत्र को पीट दे तो पुत्र क्या पिता को पीटेगा? नहीं, पिता को नहीं पीटेगा। तो यहां पर यह बात है समझने की कि अर्जुन कह रहे हैं इस भी प्रतियोत्स्यामी, अगर वो मेरे ऊपर बाण भी चलाएं तो मैं उलट करके बाण कैसे चलाऊं? ना जो छोटा होता है उसको तो जवान भी नहीं लड़ाना चाहिए अपने से बड़ों से, है ना? अर्जुन का ये कहना है। बाणों की तो बात क्या, बाणी से भी उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना? अपने से जो बड़े हैं अगर वो किसी बात में डांटे, नाराज हुए, गुस्सा हुए, तो भी हमें बाणी से भी उन पर लड़ना नहीं चाहिए। तो यहां तो बाणों से लड़ने की बात है कि बाणों से मैं लड़ूं, अगर वो गुस्सा होते हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं तो भी सहन कर लेना चाहिए, चुप रहना चाहिए, जबान नहीं लड़ाना चाहिए। अगर बड़े हैं कुछ गलत बात भी कह रहे हैं तो भी जबान नहीं लड़ाना चाहिए उनके साथ, करना नहीं चाहिए। तो यहां पर बाणों से युद्ध करने वाली बात है, बाण तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी सी बाणी ये भी नहीं। जैसे कि अर्जुन ने एक बार ऐसा किया, युधिष्ठिर से जबान लड़ाई, लेकिन ये जीवन में पहली बार ऐसा किया था, लेकिन ऐसा करके अर्जुन को इतना दुख हुआ कि अपने गर्दन को तलवार से काटने के लिए तैयार हो गए, आत्महत्या करने को तैयार हो गए अर्जुन, कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आप में जिंदा नहीं रहना चाहिए था। है? बात क्या थी, युधिष्ठिर महाराज युद्ध भूमि में कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे और कर्ण ने अपने बाणों से युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया और युधिष्ठिर युद्ध को छोड़ करके भाग करके शिविर में आ गए और वहां शिविर में उनका उपचार हो रहा था, बहुत घायल हो गए थे और बहुत मृत्यु के निकट आ गए थे। तो कुशल जो चिकित्सक हैं वो और मंत्र जानने वाले भी उनके घावों को ठीक कर रहे थे मंत्र के द्वारा और औषधि के द्वारा, और कारण ये था कि कर्ण का युधिष्ठिर के साथ युद्ध हुआ कि अर्जुन दूर संसप्तकों के साथ युद्ध करने के लिए गए थे। जब अर्जुन को समाचार मिला कि युधिष्ठिर घायल हो गए हैं तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, युधिष्ठिर को देखने जाएं या कर्ण से युद्ध करें? भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर को देखने चलो, तो अर्जुन युधिष्ठिर जी को देखने आए। तो समय युधिष्ठिर ने समझा कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया, तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को देख करके ही बड़े प्रसन्न हुए, तुमने अच्छा किया कर्ण को मार डाला, तुम्हारे हाथों ही कर्ण को मरना था, तुम्हारे भरोसे ही हम युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि नहीं मैंने कर्ण को अभी नहीं मारा है और मैंने समाचार सुना कि आप बहुत घायल हो गए हैं, तो मैं आपको देखने आया हूँ। तो युधिष्ठिर बड़े गुस्सा हुए और बड़े दुखी होकर के अर्जुन से बोले कि फिर क्या फायदा तुम्हारे गांडीव का, हरि बोल, फिर क्या फायदा तुम्हारे गांडीव का है? अगर तुम जो है इस गांडीव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो शत्रुओं को नाश करने में, तो फिर इस गांडीव को तुम फेंक दो या किसी को दे दो, गांडीव को क्या फायदा गांडीव धारण करने का। तो अर्जुन जो है उस समय युधिष्ठिर की गर्दन काटने के लिए तलवार लेके आगे बढ़े, गुस्से से नहीं कि गुस्सा आया, लेकिन क्या कारण था, कारण यह था कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी अपने मन में, कभी किसी को बताया नहीं, अपने मन में प्रतिज्ञा करी थी कि जो कोई मुझे कहेगा कि मैं गांडीव ध्वज को फेंक दूं उसका मैं गर्दन काट दूंगा। सोचो इतने सत्य के पक्के हैं अर्जुन, मन में भी अगर कोई प्रतिज्ञा कर ली, बताया नहीं कुछ किसी को, तो उसके लिए भी उनको चिंता हो गई कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। तो दूसरे का गला काटने के लिए आगे बढ़े, उसमें भगवान कहते हैं कि पागल ये क्या कर रहे हो, अपने बड़े भाई का तुम गला काट रहे हो, आप जानते हो कितनी बड़ी कितना बड़ा पाप होगा। बात है नहीं सुनते नहीं लोग हैं, कितना बड़ा पाप होगा अपने धार्मिक भाई की हत्या करके, इतना बड़ा पाप तो और कोई हो नहीं सकता। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मैंने अपने मन में एक बार प्रतिज्ञा की थी कि कोई अगर मुझे ऐसा कहेगा कि मैं गांडीव ध्वज को फेंक दूं तो मैं उसका सिर काट लूंगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस प्रतिज्ञा के चक्कर में रहे कि तुम्हें प्रतिज्ञा पूरी करनी है, तो तुम जानते हो कितना बड़ा पाप कर रहे हो, हरि बोल, इधर देखो, तुम जानते कितना बड़ा पाप कर रहे हो, प्रतिज्ञा को तोड़ने में इतना बड़ा पाप नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है प्रभु, ये तो आपने ठीक कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूं, लेकिन ऐसा उपाय बताइए कि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए, मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और मुझे बिल्कुल पाप ना लगे। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसा करना है तो अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो गुरु हैं, उनका अपमान करने से भी उनकी हत्या हो जाती है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज की हत्या भी नहीं होगी और हत्या भी हो जाएगी, तुम इनका अपमान कर दो, कुछ कड़वे शब्द बोल दो युधिष्ठिर महाराज को। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को कड़वे शब्द बोल दिए, क्या बोले कि तुझे क्या जरूरत है सब बोलने की, कर्ण को मारना है तो मैं मारूंगा, मैं युद्ध में चाहूंगा मैं युद्ध करूंगा, ऐसे तू तू करके युधिष्ठिर को अर्जुन ने बातें बोल दी। तो युधिष्ठिर तो बड़े दुखी हुए, आज तक अर्जुन ने कभी युधिष्ठिर से इस तरह से तू क्या करके बात नहीं की थी, तो बड़े दुखी हुए और उस समय युधिष्ठिर बन की ओर जाने लगे, वो तो समझे नहीं इस रहस्य को कि क्या कारण है, अर्जुन मुझे ऐसे तू क्या करके क्यों बात कर रहा है, तो बन की ओर जाने लगे। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से चलो उनको अप्रसन्न करो, माफी मांगो उनसे। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन दोनों उनके चरणों में गिरे और समझाया, भगवान कृष्ण समझाया कि अर्जुन ने चूंकि प्रतिज्ञा की थी कि कोई अगर उनको कह दे कि गांडीव को फेंक दो तो उसका सिर काट लेंगे, तो इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के ही लिए आपका अपमान किया है, लेकिन और कोई इरादा नहीं था अर्जुन का, आप प्रसन्न हो जाइए, आप माफ कर दीजिए, कोई और दूसरा कारण नहीं था आपका अपमान करने का। तो युधिष्ठिर समझ गए, तो युधिष्ठिर तो प्रसन्न हो गए, लेकिन अर्जुन आप अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार निकालते हैं। भगवान कहते हैं आप क्या पागलपन आ गया, अपनी गर्दन काटना चाहते हो, ये तो जानते हो कितना बड़ा पाप है, युधिष्ठिर की गर्दन काटने से भी बड़ा पाप तो अपनी गर्दन काटना है, आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, ये क्या कर रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता, अपने बड़े भाई को मैंने ऐसे वचन कहे ऐसे व्यवहार किया मैं जीना नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं इसका मतलब आत्महत्या करोगे, इतना बड़ा पाप करोगे, अपनी हत्या करोगे। अर्जुन कहते हैं तो प्रभु ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं जीऊं भी नहीं और जीता भी रहूं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम अपनी प्रशंसा करो, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करो, है ना। तो जब कोई व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है तो वो अपनी ही हत्या कर लेता है, अपने को ही मार डालता है। इस तरह से उसको पाप भी नहीं लगता है और अपनी हत्या भी कर लेता है। तो इस तरह से अर्जुन ने फिर अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दी, मेरे समान कौन वीर है, मैंने तो शंकर जी को भी युद्ध में संतुष्ट किया है, मैंने तो संसतों के साथ युद्ध किया है, मैं तो इंद्रलोक में भी गया हूँ, मैंने इनको इन राक्षसों को मारा, इसको मारा, उसको मारा, ऐसे अपनी मुख से अपनी प्रशंसा की। और ऐसा करके अर्जुन का सब तेज समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अर्जुन ने एक बार युधिष्ठिर महाराज से जवान लड़ाई थी, लेकिन इसका कितना बुरा उनको अनुभव हुआ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जो गुरु की जो हत्या है वो शरीर से नहीं की जाती है, वाणी से या मन से भी अगर उनका अपमान कर दिया जाए तो भी हत्या हो जाती है। ब्राह्मणों की हत्या, गुरु की हत्या, अपने से जो बड़े हैं उनकी हत्या इस प्रकार से भी होती है, अगर अच्छी प्रकार से उनका सम्मान नहीं होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं पूजा रहा वरिष्ठोदन है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यदि भी आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। वाग युद्ध मतलब बातों के द्वारा भी युद्ध ना किया जाए। तो भी मैंने बताया कि बाणी के भी द्वारा भी युद्ध नहीं करना चाहिए, और यहां तो बाणों के द्वारा युद्ध करना पड़ेगा। कैसे कैसे युद्ध किया जाए, यहां तक यदि कभी भी रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था, क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन का ही कहना है, अर्जुन का कहना है कि आप अपने से बड़ों पर कभी हाथ चलाया आपने, नहीं चला सकते, लेकिन हाँ अपने से बड़े को मारा है भगवान कृष्ण ने। कौन था वो? कंस, कंस मामा था जिसको मारा है। लेकिन यहाँ अंतर है, कंस मामा की स्थिति दूसरी थी और ये जो गुरु हैं द्रोण और भीष्म हैं वे कंस जैसे तो नहीं है, उनका चरित्र कंस के समान नहीं है। द्रोणाचार्य का चरित्र तो इतना पवित्र है कि द्रोण और द्रुपद ये दोनों सहपाठी थे, बचपन में साथ साथ पढ़ते थे एक ही गुरुकुल में। तो एक बार द्रोणाचार्य ने द्रुपद ने द्रोण से कहा कि मित्र मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने पिता के राज्य का अधिकार प्राप्त करूं, और अगर मुझे कभी राज्य मिला अपने पिता का तो मैं आधा राज्य आपको दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, लेकिन द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, तपस्वी ब्राह्मण थे, उन्हें राज्य से क्या करना। लेकिन द्रुपद ने बड़े खुश होकर कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। आगे चल करके जो है अपने घर गए, गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके द्रोणाचार्य अपने घर आए और द्रुपद अपने घर आए, और दोनों विवाहित हुए। द्रुपद राजा बने और द्रोणाचार्य जो है एक तपस्वी ब्राह्मण बने। द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था कृपी के साथ और उससे पुत्र हुआ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो जब छोटा था तो उसको दूध भी नहीं मिल पाता था पीने के लिए, तो बच्चा काफी रोता था। तो द्रोणाचार्य सोचते हैं कि हमारे मित्र हैं द्रुपद महाराज, पहले साथ साथ पढ़ते थे, अभी राजा बन गए हैं, तो उनसे कुछ गाय मांग लेंगे दान में, अपने मित्र से मांगने में क्या नुकसान है, तो अपने पुत्र को दूध पिला सकेंगे ठीक से। तो जब द्रुपद के दरबार में गए या महल में गए द्रोणाचार्य, तो महल के जो फाटक पर था, क्या बोलते हैं, द्वारपाल। तो द्वारपाल ने कहा कि बताइए आपको क्या काम है राजा से। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अंदर राजा से कह दो कि आपके प्राचीन मित्र द्रोणाचार्य आए हैं। तो जब द्रुपद को यह समाचार मिला कि उनके पुराने मित्र द्रोणाचार्य आए हैं, तो द्रुपद जो है ना बड़ा गुस्सा हुआ, राजा बनने का अभिमान इसलिए बड़ा गुस्सा हुआ। बोले कि कह दो कि जब हम लोग साथ साथ पढ़ते थे तब हम मित्र थे, अभी मैं राजा हूं और तुम भिखारी हो, अब मित्रता कैसी। देखा कितना खराब ये व्यवहार था, द्रोणाचार्य को बाहर से लौटा दिया मित्रता की बात पर कि मित्रता कैसे, जबकि एक ब्राह्मण है राजा का गुरु होता है, ब्राह्मण का ज्यादा सम्मान होता है, राजा को सम्मान करना चाहिए ब्राह्मण का। और दूसरी तरफ देखो भगवान कृष्ण जब सुदामा आए उनके महल में है, तो किसी ने रोका नहीं सुदामा जी को, कितने द्वार मिले थे रास्ते में और कितनी सेनाएं थी रास्ते में, इन भगवान कृष्ण ने कैसी व्यवस्था की थी कि किसी ब्राह्मण को रोका ना जाए। और वो ब्राह्मण सीधे कहां पहुंचा, जहां भगवान अपने अंतःपुर में थे, रुक्मिणी के साथ थे, सीधे मतलब कोई रोक टोक नहीं, ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं, अंदर से भी अंदर, उसके अंदर भी, उसके भी अंदर, सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए सुदामा जी। ऐसे कुछ घटना नहीं है कि द्वारपाल ने रोका हो सुदामा जी को और सुदामा जी को द्वार में खड़ा किया हो। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि सुदामा जी सीधे अंदर पहुंचे, कहां पर, जहां भगवान कृष्ण थे, सीधे है? और कृष्ण ने फिर उनका आलिंगन किया और कृष्ण ने उनको फिर अपने पलंग पर बैठाया, उनके पैर धोए, है ना। ये देखो कृष्ण और सुदामा भी गुरुकुल के मित्र थे, तो एक तो ये गुरुकुल के मित्र हैं है? और एक राजा बन गए, एक वही दरिद्र ब्राह्मण बन गए, है ना। जब दरिद्र ब्राह्मण आया मित्र है तो कैसे स्वागत किया, सम्मान किया कृष्ण ने। और यहां देखो दूसरा द्रुपद और द्रोणाचार्य, द्रुपद भी राजा बन गए और द्रोणाचार्य एक दरिद्र ब्राह्मण है ना। जब आए तो द्वार के बाहर से ही लौटा दिया कि हमारी मित्रता पहले थी जब हम बराबर थे, अभी मैं राजा हूं तुम निर्धन हो, तो मित्रता कैसे हो सकती है। इस बात पर नाराज हुए द्रुपद कि मित्रता की बात क्यों कही आपने, नहीं तो वैसे कुछ दे देते धन या, लेकिन मित्रता की बात पर इतने नाराज हुए कि महल के द्वार से ही बाहर लौटा दिया। द्रोणाचार्य को जो अपमान है वो लगा, ये कोई थोड़ा अपमान थोड़ी था, बहुत ज्यादा अपमान था। तो द्रोणाचार्य जब आए तो फिर हस्तिनापुर के क्षेत्र में जो कौरव के बच्चे थे वो गेंद खेल रहे थे, तो गेंद जो है अचानक कुएं में गिर गई, तो सब बच्चे कुएं के चारों तरफ खड़े हो गए, अब सोच रहे थे गेंद कैसे निकालें। तो द्रोणाचार्य जी जो है मंत्र जानने वाले थे, अस्त्र शस्त्र और सब मंत्र जानते थे, तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि देखो बच्चों, मैं तुम लोगों की गेंद कुएं से बाहर निकाल दूंगा और मेरा ये चमत्कार देखो। तो उन्होंने कई सीख इकट्ठी की और मंत्र पढ़ा और सीख को फेंका, तो गेंद को उसने छेद दिया। फिर दूसरी सीख फेंकी तो उसने उस सीख में कुछ छेद दिया, ऐसे सीखों के द्वारा उन्होंने गेंद को बाहर निकाल लिया, कुएं के बाहर निकाल लिया। तो कौरव के राजकुमार बड़े विस्मित हुए, बोले आप कहां से आए महाराज, आपका परिचय क्या है। बोले देखो भीष्म जी से जाकर के जो मैंने काम करके दिखाया है वो तुम बताओगे उनको तो वो जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, जाओ भीष्म जी को बताओ। तो भीष्म पितामह को ये सब बच्चे जब आगे बताते हैं तो भीष्म जी समझ गए कि हमारे राज्य में द्रोणाचार्य जी आए हैं, ओहे तो महान शस्त्रवेत्ता है, महान गुरु है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को आदर पूर्वक बुलाया, सम्मान किया और कहा कि आप कैसे आए। द्रोणाचार्य ने बताया कि मतलब मैं काफी निर्धन हूं, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। भीष्म जी ने कहा कि आप जीवन भर यहीं रहिए, आप जो है ना कुरु वंश के गुरु बन जाइए और आप जीवन भर यहीं रहिए, आपकी हम सब सेवा करेंगे। तो द्रोणाचार्य फिर जीवन भर के लिए हस्तिनापुर में रहे और उनके कुल के आचार्य बन गए द्रोणाचार्य। आगे चल करके जब कौरव पांडवों को जब सब शिक्षा दे दी अस्त्र शस्त्रों की, जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो सबने कहा कि गुरु दक्षिणा मांगिए महाराज, आपको क्या हम दक्षिणा दें। तो द्रोणाचार्य के पास तो सब कुछ था, उन्हें क्या दक्षिणा चाहिए, संतुष्ट वैसे भी संतुष्ट ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि देखो मुझे एक ही दक्षिणा चाहिए, वो क्या है कि राजा द्रुपद को बांध करके मेरे सामने लाओ, जिसने अपमान किया था उसको बांध करके मेरे सामने लाओ। तो सबसे पहले तो दुर्योधन बोला मैं करूंगा। और दुर्योधन का मित्र कर्ण था, हाँ कर्ण को भी साथ में ले लिया, बड़े उत्साह के साथ पूरी सेना लेकर के गए राजा द्रुपद के पांचाल राज्य में। तो सेना से आक्रमण कर दिया, तो द्रुपद को जब पता चला तो अपने महल के बुर्ज में खड़ा होकर के द्रुपद ने ऐसे बाण चलाए कि कौरवों की सेना को लौटा दिया। और कर्ण है, दुर्योधन है, सब कौरव हार गए, हार के लौटाए और गुरु महाराज को कहा कि महाराज हमसे ये काम नहीं हो पाया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी दक्षिणा हो गई। द्रोणाचार्य का ठीक है तुम्हारी दक्षिणा हो गई, अब अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन को जब आदेश दिया, अर्जुन अकेले गए और द्रुपद पूरी सेना लेकर के आया। अर्जुन ने पूरी सेना को हराया और द्रुपद को बांध करके अपने रथ में डाल करके और ले आए द्रोणाचार्य के सामने, ये लीजिए महाराज आपकी दक्षिणा। द्रुपद को बांध करके डाल दिया द्रोणाचार्य के चरणों में, आपकी दक्षिणा ये लीजिए। तो हाँ द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, हाँ अर्जुन तुम ही मेरे परम प्रिय शिष्य हो, आशीर्वाद दिया अर्जुन को कि तुम्हारी सदा युद्ध में विजय हो, सब प्रकार के आशीर्वाद दिए। फिर द्रुपद जो है बड़ा लज्जित होकर के द्रोणाचार्य के सामने पड़ा हुआ था, बंधा हुआ पड़ा था। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो महाराज द्रुपद, हमने आपके साथ जो ऐसा व्यवहार किया है इसका बुरा नहीं मानना, हमारी केवल एक ही इच्छा है कि आपके साथ मित्रता की जाए। तो पहले हम चूंकि मित्र थे, गुरुकुल में थे तो हम मित्र थे, और अभी तुम राजा हो और हम निर्धन हैं, इसलिए मित्र नहीं बन सकते। तो मित्र बनने के लिए हम क्या करें, आपका आधा राज्य ले लेते, ठीक है। द्रोणाचार्य ने कहा आपका आधा राज्य हम ले लेते हैं और अब हम आपके मित्र बन गए, ठीक है, अच्छी बात है ना, क्योंकि आपने कहा कि जब मैं राजा हूं और तुम गरीब हो तो मित्र कैसे बन सकते हैं, तो ठीक है भाई हम बराबर बन जाते हैं, आपका आधा राज्य हम भी ले लेते हैं और हम मित्र बन गए। तो सही जवाब दिया द्रोणाचार्य ने, लेकिन द्रुपद बड़ा लज्जित हुआ, आधा राज्य ले लिया द्रोणाचार्य ने, उन्हें राज्य की जरूरत थोड़ी थी, वो तो हस्तिनापुर के राज्य में मिला दिया, और द्रुपद बड़ा लज्जित हुआ। लेकिन फिर द्रुपद की जो है ना ये है मनोभावना कितनी खराब है कि द्रोणाचार्य को मार डालने के लिए एक पुत्र पैदा करना चाहते हैं कि मुझको एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो द्रोणाचार्य को मार डाले। अब इसके लिए कोई ब्राह्मण से पूछते हैं भाई ऐसा यज्ञ कराओ जैसे कि द्रोणाचार्य को मार डालने वाला पुत्र पैदा हो। कोई ब्राह्मण करे मुझसे इतना पाप कराते हो, मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं ऐसा करूं, ऐसा काम करूं, ये नहीं कर सकते। तो कई ऋषि मुनियों के पास गए, तो एक एकत नाम के मुनि थे उन्होंने भी मना कर दिया, द्वित नाम के मुनि थे उन्होंने मना कर दिया, फिर किसी ने कहा भाई त्रित नाम के मुनि के पास जाओ, ये तीनों भाई हैं एकत द्वित और त्रित हैं, त्रित नाम के मुनि उनके पास जाओ क्योंकि वो उनके पास बड़ी शक्ति है और वो हर प्रकार के काम करने में समर्थ हैं। तो त्रित नाम के मुनि को जब उन्होंने राजा द्रुपद ने प्रार्थना की तो वो तैयार हो गए, उन्होंने यज्ञ कराया। तो उस यज्ञ कुंड से फिर जो है द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये दोनों पैदा हुए। अब द्रोणाचार्य को ये सब पता है कि उनको मारने के लिए राजा द्रुपद यज्ञ कराना चाहते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हो रहा है, फिर आखिर एक ब्राह्मण तैयार हुआ है और वो यज्ञ कराया और बालक भी पैदा हो गया और उसका नाम धृष्टद्युम्न है, ये भी पता हो गया। तो भी द्रोणाचार्य ने कोई भी अपनी व्यवस्था नहीं की, अपनी सुरक्षा की, ठीक है जब मरना होगा तो मरेंगे, जैसी विधाता ने मृत्यु लिखी है उसी प्रकार से मरेंगे। तो उन्होंने कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं किया इन कामों में, या किसी प्रकार की बाधा भी नहीं डाली। कि वो यज्ञ में बाधा डालते कि यज्ञ पूरा ना हो, जैसे राक्षस लोग यज्ञ में बाधा डालते हैं यज्ञ पूरा ना हो, ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि कंस को जब पता चला तो उसने देवकी के सब बच्चे मार डाले और कितने कितने उसने जो ना अत्याचार किए है ना। इसी प्रकार से संबर असुर को भी जब पता चला कि कृष्ण को जो पुत्र हुआ है प्रद्युम्न नाम का रुक्मिणी से वो मुझे मारेगा, तो उसने तुरंत 10 दिन के अंदर ही बालक का हरण कर लिया और समुद्र में डाल दिया। खैर वो भगवान की व्यवस्था से प्रद्युम्न की रक्षा हो गई और मछली के पेट में चले गए हैं, और वो मछली फिर उसी के रसोई में आई, रसोई घर में आई और वो काटी गई और वो बालक उसी के रसोई घर में ही पला और आखिर उसी को मारा, तो वो दूसरी बात है। लेकिन ये देखो द्रोणाचार्य की महानता कि द्रोणाचार्य कितने महान है, उनको पता कि वो बालक पैदा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं की उसको मारने की, उनके पास बहुत से मंत्र तंत्र सब कुछ थे, क्या क्या नहीं होते बच्चों को मारने के लिए भी कई प्रकार के लोग मंत्र तंत्र कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो द्रोणाचार्य के पास कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार के अस्त्र थे शस्त्र थे, अगर बच्चे को मारना चाहें तो मार सकते। लेकिन द्रोणाचार्य ने कोई भी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, बल्कि उल्टा और क्या किया, जब धृष्टद्युम्न उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया तो एक आचार्य का कर्तव्य है कि कोई विनम्रता से अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, सेवा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो उसको शिक्षा दे। तो उसी धृष्टद्युम्न को जिसके हाथों उनकी मृत्यु निश्चित थी उसको उन्होंने अपना शिष्य भी बनाया और उसको सब युद्ध विद्या सिखाई। ये देखो कितने महान, ये कितनी महानता है। द्रोणाचार्य आत्मज्ञानी है, आप सोच सकते हैं। दुर्योधन की दृष्टि में तो गलत है ये काम, दुर्योधन जैसे असुरों के लिए तो ये बहुत ही गलत काम है, ये मूर्खता है। लेकिन द्रोणाचार्य जो है, मतलब अगर शास्त्र के आधार पर देखा जाए, भगवत गीता के आधार पर देखा जाए, तो बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं। आप लोग बातें कर रहे हैं तो बहुत खराब बात है, यहाँ पर प्रवचन हो रहा है आप लोग सुन नहीं रहे हैं, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं हंस रहे हैं, बहुत खराब, ये अपराध है। ये मेरा फर्ज है कि आप लोगों को देखूं, आप लोगों को बताऊं। अगर आपस में ही बातें करनी है इधर तो यहाँ क्यों बैठे है ना। जो प्रवचन देने वाला है वो भी जब देखता है आप लोग बातें कर रहे हैं उसकी भी फिर रुचि नहीं होती बोलने में सुनाने में। जो सुनने वाले हैं अगर वो कुछ रुचि दिखाए सुनने में तो सुनाने का कुछ मतलब है, आनंद आता है। आपस में बातें कर रहे हैं, ये अपराध है, ये जो है ना भगवद गीता का अपराध है, ये जो है प्रभुपाद का अपराध है, ये प्रभुपाद की जो है ना व्यवस्था है जिससे क्लास हो रहा है। अगर नहीं सुनना है क्लास तो आप बातें करो, कोई बात नहीं है, ये सामने मैं सामने ही देख रहा हूँ बातें कर रहे हैं, आप हंस रहे बातें कर रहे हैं, जब सुनने का समय है तो उस समय बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है आपकी बातें धीरे धीरे हो रही हैं, उसमें कथा में बाधा नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी देख करके भी व्यक्ति को जैसे ये जाप कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, जाप करना ठीक नहीं इस समय क्लास के समय, क्योंकि सामने जो व्यक्ति बैठे हैं तो उनको देख करके ही व्यक्ति को सुनाने में रुचि आती है, सुनाने की इच्छा होती है, सुनाने का उत्साह होता है, नहीं तो सुनाने का उत्साह नहीं होगा। हम ऐसे थोड़ी हैं कि जैसे वो होते ना व्यवसाय करते हैं कथा बांचने का, कथा बांच करके चले गए, बस पंडित जी अपना काम करके चले गए, कथा बांच के चले गए, बाकी लोग सुनने वाले अपने अपने बातें में लगे हैं। वो पंडित जी अगर कुछ कहें तो कहें आपको क्या करना, अपनी कथा बांचो बस, हम सुने ना सुने, उनको पैसा मिलता है वो कथा बांच करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो ऐसा नहीं है, ये क्लास है, इसको प्रभुपाद ने क्लास का नाम दिया, क्लास कक्षा है, ये गीता की कक्षा हो रही है। कक्षा में क्या है, आप जो है ना विद्यार्थी है और जो शिक्षक है टीचर है क्लास टीचर है ना, वो ये देखता है कि जो विद्यार्थी हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं है ना। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं गीता के, वैसे नहीं है जैसे कि बस वो पंडित जी को बुला लिया कथा बांच करके अपने चले गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, पंडित जी को कोई मतलब नहीं, कोई सुने ना सुने अपने बांच करके चले जाते हैं, उनको पैसा चाहिए, पैसा चढ़ाओ और बस सत्यनारायण की कथा है वो सुना करके चले जाते हैं, साधु नाम बानिया है तो वो कथा सुना करके चले गए अपने भाई। कोई ना कुछ प्रश्न पूछता है ना उनको किसी प्रश्न का उत्तर देना है, अपना कथा बांची, अपना पैसा लिया, अपना आटा चावल वो सब बांध बून करके दक्षिणा लेकर के अपना चले गए। ये वो कथा नहीं है इस तरह की, ये व्यवसायिक कथा कहलाती है, प्रोफेशनल रिसाइटल, प्रोफेशनल रिसाइटल वो नहीं है। ये तो क्लास है, क्लास में जो है क्लासरूम जैसा जो है अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है ना, इसलिए आप लोग जो है ध्यान दो क्योंकि इसमें अपराध होता है ना, भगवद्गीता का अपराध होता है। तो मैं क्या बता रहा था, द्रोणाचार्य इतने आत्मज्ञानी थे, सोचो कि जिस व्यक्ति के हाथों उनकी मृत्यु होनी है उसी को ही शिक्षा दे रहे हैं, विद्या की शिक्षा दे रहे हैं धृष्टद्युम्न को, है ना। तो ये द्रोणाचार्य का चरित्र है। तो यहां पर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था, क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो ये तर्क है, तो आप समझ रहे हैं अर्जुन ये तर्क क्यों प्रस्तुत किया। इसके पहले अर्जुन ने बहुत से तर्क प्रस्तुत किए थे, जैसे अर्जुन ने कहा था कि हमें विजय नहीं चाहिए, हमें राज नहीं चाहिए, जिनके लिए हम चाहते।